यह आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एबी पंड्या और जल संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ डॉ अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जल जीवन मिशन और नल से जल और जल संरक्षण विषय पर, और इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं, श्री ए बी पांड्या जी जो कि केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जो कि जल संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने देश में 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से इस बारे में घोषणा की थी कि हम नल से जल के लक्ष्य को हासिल करेंगे, और 5 साल की छोटी सी अवधि में ही ग्रामीण जल कनेक्शन कवरेज को 3 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ तक पहुंचाया गया है, जो निश्चित रूप से बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि हमारे देश के लिए है। इस विषय पे, इस उपलब्धि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें हर किस्म के जो सोशल, जो सामाजिक और जो बाकी के पहलू हैं उनको देखते हुए इतने घरों में और इतने जगह में लोगों को पानी के लिए जो है सुविधा प्रदान करना, वो एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए जो स्रोत ढूंढने के काम है, वो स्रोत ढूंढने के काम भी इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व रहे हैं, और उसके लिए जो भी राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो इस विभागों से जुड़े हुए हैं, तो वहां से काफी हद तक जो है वो काम उसमें किए गए हैं। बड़ी योजनाएं भी बनाई गई हैं, जिसमें कि जो गांव के एक ग्रुप बना के, और वो ग्रुप के लिए एक साझा एक सोर्स जो है वो डेवलप करके, और फिर उनसे जो है पानी को फ्रीज करके और फिर सबको दिया जाए। तो उस तरीके से इस संरचना में जो जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उसको देखते हुए ये लगता है कि पूरे के पूरे देश में जो तकनीकी और जो सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं वो उन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया है, और इतना बड़ा सहयोग जनरेट करना लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा कि देश ने जो उपलब्धि हासिल की है उसकी बात कर रहे हैं कि 5 साल के अंदर ही 3 करोड़ से 15 करोड़ ग्रामीण नल कनेक्शंस को हमने हासिल किया है, और इस समय पर हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल जी, उन्होंने भी कहा है कि ये जो उपलब्धि है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता को बताती है, और इस स्वर्णिम उपलब्धि से न केवल हमारे देशवासियों को शुद्ध जल का उपहार मिला है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी अहम सुधार हुआ है। तो आप इस बारे में और क्या बताना चाहेंगे?
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पिछले 5 सालों में जो भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक काम हुआ, इवन बहुत सारे प्रोग्रामों में दुनिया भर में हमने इस बात करी, इतना बड़ा प्रोग्राम, बहुत लोग आश्चर्यचकित होते थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम किस तरह से यहाँ चल रहा है, और जिस तरह से लक्ष्य को हासिल करा गया है ये बहुत बड़ी बात है। अभी लक्ष्य का मैंने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेटेड होकर चलना है। अब इस समय हम कई जगह डिस्ट्रिक्ट में भी काम करते हैं, कई बार इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, नेशनल पे भी काम करते हैं, तो जिस तरह से ये सोच है इसको एक नई दिशा में ले जाने की जरूरत है। नदियों के संरक्षण में भी, तालाबों के संरक्षण में भी, पानी कहाँ से आता है उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत सरकार ने बहुत सारे मिशन विजन चला रखे, कई मिनिस्ट्रीज और भी है, तो इस समय टाइम है उन सबको कहीं ना कहीं एक जगह लाने की, क्योंकि इंटीग्रेटेड वे में होंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी समझने में आसानी होगी। कई बार क्या होता है डिस्ट्रिक्ट में एक योजना आती है दूसरा आती है, अब वहां क्षमताएं थोड़ी कम है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है 5 सालों में, मैं भी कई जगह डिस्ट्रिक्ट हमारे पास थे, तो उन क्षमताओं को नीचे के लेवल पे हमें और बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि अब कार्यशाला या फिर कई कार्यशाला करी गई इस तरह की, ताकि जो गुणवत्ता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकारी हैं या लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या जिस तरह से महिलाएं या बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, उनको किस तरह से वो महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं आने वाले टाइम में भी, क्योंकि 15 लाख लक्ष्य नहीं है हमें, तो हमारी जो भी जनसंख्या है सब तक हमें कम से कम स्वच्छ जल पहुंचाना है, जो भी जो बेसिक नीड है, वाटर राइट टू वाटर में हम देखते हैं पानी तो सब तक पहुंचना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा फंड्स की जरूरत है, हमें और कार्यकर्ता की जरूरत है, लोकल लेवल पे हमें कुछ कार्यक्रम और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो लोग अंडरस्टैंड कर पाए, और उनके लिए भी एक तरह से ये व्यवसाय की तरह बन जाएगा, जो काम हो रहे हैं तो वहां के लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी इनकम भी बढ़ रही है।
हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 में जो जल जीवन मिशन और नल से जल जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की थी और तब से निरंतर हम इस विषय में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे हमने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उनको कैसे प्राप्त करना है, तो पांड्या जी आप जानकारी दें कि ये जल जीवन मिशन क्या है और इसके अंतर्गत हमने कौन से लक्ष्य निर्धारित किए।
जल जीवन मिशन जो है वो एक भारत सरकार का एक बहुत ही बहुआयामी प्रोग्राम है जिसके चलते ये करा गया है कि सारे के सारे जितने भी हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो पूरे के पूरे सारे ग्राम्यजनों में सारे घरों में जो है पाइप से जल उनके घर के अंदर मिले और वो जल की एक निश्चित गुणवत्ता हो तो वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसको हम यूटिलाइज कर सके। तो ये हमारा जो एम हमने जो है ये जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में शुरू किया था और आज ये है कि जब शुरू किया था तब करीब 17% हाउस होल्ड्स के पास ही पाइप के कनेक्शन थे, आज जो है वो करीब 74% लोगों के पास ऑलरेडी पाइप के कनेक्शन पहुंच चुके हैं और उसकी वजह से जो है घर के अंदर में जो लोगों को जल मिलने से उनके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ा है और उनके जो रहने की जो शैली है उसमें भी काफी हद तक फर्क पड़ा है।
पांड्या जी ये जो पूरी योजना है कि जैसे पाइप के थ्रू नल के माध्यम से जो जल पहुंचाना है तो इसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों शामिल हैं और या दोनों के लिए कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए हैं।
प्राइमरी फोकस जब शुरू किया गया था तब तो ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हीं को देखते हुए शुरू किया गया था पर शहरी क्षेत्र को भी अलग से जो कि अलग अलग योजनाएं हैं जैसे अमृत है और इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनके थ्रू शहरों में भी यही जो एरियाज वंचित है उनके लिए भी इसी तरीके का टैप वाटर सप्लाई वगैरह का प्रोविजन करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो मेन काम है जो क्योंकि गांवों में सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम होता था, लोगों को काफी किलोमीटर तक जाना पड़ता था पानी के एक बाल्टी लाने के लिए, तो उस तरीके की सिचुएशन में लोगों को राहत दिलानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र पे हमारा जो है वो काफी ज्यादा ध्यान रहा है और उसमें अचीवमेंट लेने की काफी कोशिश की गई है।
तो इसमें जो लक्ष्य है वो क्या है, जैसे एक घर में एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो किसी भी घर में जो पानी की आपूर्ति नल के माध्यम से की जा रही है तो औसतन एक व्यक्ति को कितना पानी उसमें मिल पाता है।
औसतन एक व्यक्ति को 50 से 60 लीटर पानी एक व्यक्ति को एक दिन के लिए मिलता है और उसके लिए फिर जो घर का जो साइज है घर के जो कि परिवार की जो साइज है तो उसके हिसाब से ये प्लानिंग करने के टाइम डिसाइड किया जाता है कि कितना पानी गांव में चाहिए होगा और उस हिसाब से फिर बाकी की जो प्रणाली है उसको फिर साइज वगैरह उसको दिया जाता है
जी।
तो जो जनरली ये है कि जो शहरों में हम लोग जो है वो करीब 135 लीटर्स पर कैपिटा पर पर्सन देते हैं पर गांव में इसे कम इसलिए देने का होता है क्योंकि जो सुविधाएं हैं और जो बाकी के जो सप्लाई के प्रॉब्लम्स हैं तो उसके चलते वहां पर प्रोविजन जो है वो थोड़ा कम किया जाता है। शहरों में वो 135 लीटर में फिर आग बुझाने के और इस तरीके के प्रोविजंस के लिए भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसमें शामिल हुई होती है। सो अल्टीमेटली करीब 50 लीटर पानी जो है एक आदमी के लिए चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो वो जरूरी होता है जिसमें कि अपना नहाने धोने का साफ करने का और रसोई बनाने का और वो सारा काम वो कर सके।
डॉक्टर अरविंद कुमार जी जो हम जल संरक्षण की बात करते हैं क्योंकि जल संरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है और जो हमारा नल से जल का कार्यक्रम है वो भी काफी हद तक उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, तो भारत में जल संरक्षण को लेके किस तरह के कार्यक्रम हैं और उन पर काफी काम हो रहा है तो आप जल संरक्षण के क्षेत्र में कौन से प्रमुख कार्य कर रहे हैं।
पहले तो मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि यूएन वाटर के अनुसार आज भी 2.2 बिलियन लोग सुरक्षित पेयजल के बिना रह रहे हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी वर्ष के कम से कम कुछ समय के लिए गंभीर जल संकट का अनुभव किया जबकि एक चौथाई ने अपने वार्षिक नवीकरणीय मीठे पानी की आपूर्ति का 80% से अधिक उपयोग करते हुए जल तनाव के अत्यंत उच्च स्तरों का सामना किया। भारत में हम सभी ने गर्मी में दिल्ली देश के अन्य हिस्सों में जल संकट देखा, जैसा कि सरकारें जल संकट करना चाहती हैं पिछले एक दशक में हमने बहुत कुछ सुधार किया है। मैं तीन बिंदुओं पर बात करूंगा जिस पर आपने बात की है। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत में जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं या मिशन शुरू किए, उदाहरण के तौर पे 3500 बिलियन रुपए की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता वाला जल जीवन मिशन अंतर्गत 70% ग्रामीण क्षेत्र कवर किया गया, जो सराहनीय है। WHO के शुरुआती अध्ययन के अनुसार परिवार को पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के कारण 30% शिशु मृत्यु दर कम हो गई। बेहतर स्वास्थ्य ताली के स्वास्थ्य देखभाल लागत समय की बचत के माध्यम से गरीबों की बुनियादी पानी और स्वच्छता सेवाओं तक बेहतर पहुंच सीधे लाभ होता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुमानित लगभग 101 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत होगी। जल संसाधनों का अच्छा प्रबंधन आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादकता में अधिक निश्चितता और दक्षता लाता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर पैदा करता है। इनके कार्यान्वयन के 5 साल की अवधि के दौरान लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति वर्ष रोजगार सृजन किए गए। ये मिशन के निर्माण चरण में पूरे वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष औसतन 30 लाख लोगों को रोजगार देता है। मिशन से संचालन रखरखाव के हर साल लगभग 10.92 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जल शक्ति अभियान को जल संकाय निकायों को सफाई, प्रत्यक्ष बोरवेल को पुनर्जीवन करने, जियो टैगिंग, जल निकायों के मानचित्रण, जल ग्रहण क्षेत्रों में गहन वनीकरण, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की कटाई और छोटी नदियों के कार्यकल्प पर जोर देता है। वर्षा जल संचयन अन्य स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए कैच द रेन कार्यक्रम करता है, जो आपने कहा कि अलग जो और प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर प्रत्येक जिले में 75 निकायों के निर्माण के लिए अमृत सरोवर कार्यक्रम भी है। ये सभी पहल भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के क्षेत्र में जनता के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन की तरह काम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा कुछ क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, जैसे आर्द्रभूमि, नदियां, मैंग्रोव्स, एक्वीफर वैश्विक जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्हें बहाल और पुनर्जीवित किए जाना है। उद्योगों को जल निकायों में अपशिष्ट डालने से रोकने के लिए सख्त कानून दंड होना चाहिए। उद्योगों को उनके जल पद चिन्हों के बारे में अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। जितना पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उसका दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पानी का दोबारा इस्तेमाल और उपचार एक मौलिक भूमिका निभाते हैं, और अगर हम संरक्षण को गंभीरता से लेते हैं तो उन्हें अपनाया जाना चाहिए। अंतिम लेकिन कम से कम हमारे देश के एकीकृत जल नीति की आवश्यकता है, जो न केवल जल क्षेत्र बल्कि जल का निर्भर क्षेत्र को पूरा करती है। इन मिशनों को और कार्यक्रमों में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जल संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करने की में शिक्षा वकालत के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। ज्ञान का प्रसार करके एंड सामाजिक पहलुओं पर समर्थन करके नागरिक समाज जागरूकता जुड़ाव के प्रभाव को उत्प्रेरित किया जा सकता है। तो हम इन सब विषयों पे जो है भारत सरकार के इस मिशन में काम कर रहे हैं और भी जगह पे काम कर रहे हैं, और किसी तरह से भी मतलब कहते हैं ना, इस प्रभाव को किसी रोजमर्रा की जिंदगी में जल बचत प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए ठोस प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति एक अधिक लचीले और न्याय संगत भविष्य की ओर एक रास्ता बना सकते हैं, और जहां मीठे पानी संसाधन की प्रतिशतता सभी के लिए सुलभ रहेगी, पानी के उपयोग को कम करके कुशल जल प्रबंधन के लागू किया जा सकता है।
आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, और जल का संचय करना और जल का बेहतर प्रबंधन और उपयोग। इसके अलावा एक और पक्ष है जिसके बारे में पांड्या जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो वहां पर जो सीवेज के पुनर्चक्रण की बात है, या उसको जो रिफाइन करके उसको उपचारित करके उसके पुनः उपयोग की बात है, इसको किस तरह से हमने जल जीवन मिशन में समाहित किया है?
ये काफी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम पानी का यूज करेंगे और फिर उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वातावरण को और भी काफी हद तक नुकसान करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है जरर जो कि ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स वगैरह हैं, और इस तरीके की जो छोटे इकाइयां हैं जिसके थ्रू ये जो वेस्ट पानी है उसको एक उपचारित करके फिर उसको खेती वगैरह के उपयोग में लेने का, तो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी इसके साथ जो है वो जोड़े गए हैं और कुछ हद तक जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। हालांकि अभी भी हमारी जो ट्रीटमेंट की जो क्षमता है, खास करके हमारे जो ये यूज किए हुए पानी की, वो क्षमता अभी इतनी बनी नहीं है, और फोकस जो है वो अभी भी सप्लाई पे होने से अभी इस एरिया में अभी हमें और काम करने की जरूरत है।
मैं अरविंद जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन खास तौर से मैं जानना चाहूंगा कि जो बारिश का जल है उसके संचय के लिए किस तरह की योजना है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर बारिश का पानी शहरी क्षेत्रों में तो सारा उसका कोई संरक्षण नहीं हो पाता, कोई उपयोग नहीं हो पाता, तो उसको लेके क्या कुछ विशेष योजनाएं हैं?
वर्षा जल के संरक्षण के क्षेत्र में हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, भारत सरकार भी इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण काम कर रही है। आपने दिखा होगा कि नदी का जो कोर्स का टाइम उस जगह होती है तो वहां संरक्षण करने की जरूरत है। अगर हमें निरंतर पूरे टाइम नदी में जल स्तर को बनाए रखना पड़ेगा तो हमें कहने की वेटलैंड और नदी को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि वेटलैंड जो मैंने अभी बात करी थी, हर जिले में 75 तालाब बन रहे हैं, बनने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जमीन के नीचे जो पानी है उसको संरक्षित करने में मदद करेगा। एक तो भूजल जल स्तर को संरक्षित करेगा, दूसरा रोजमर्रा के लिए जिंदगी के लिए जो पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल वाटर की जो आपकी आवश्यकता है, चाहे एग्रीकल्चर बाकी चीजें, वो भी पूरी करेगा। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली आपकी झीलें हैं, तालाब हैं, निकाय हैं, और जो हमारे मकान हैं उनके ऊपर भी वर्षा का जल होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके कॉलोनी का, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पीने के पानी में उपयोग हो सकता है। जो बचा हुआ पानी है आगे के भविष्य के लिए जब हमारे को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके लिए देश भर में काफी बड़ा जल जीवन मिशन में ही चला रखा कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह की योजनाएं कार्यान्वयन करने के लिए किस तरह की उपलब्ध हो, तो उसमें जो प्राइवेट हमारी एजेंसियां हैं वो भी काम कर रही हैं, उनके लिए भी सहयोग है। हमारी सिविल सोसाइटीज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं, ताकि वो जल की किस तरह संरक्षण करने की टेक्नोलॉजी को आम आदमी को समझा पाए। पहले से हम लोग जानते थे लेकिन हम कालांतर में उन चीजों को भूल गए। अब किस तरह से हम तालाबों में नदियों का जल स्तर बढ़ाया जा सके, भूमिगत जल को बढ़ाया जा सके। और एक और चीज बहुत बड़ी कारण है कि हमारे यहाँ पर जो प्लास्टिक है, बाकी पोल्यूशन है, कुछ भी कचरा जो भी जा रहा है वो इसे निकायों में या हमारे जल स्रोतों में पहुंचता है, उनकी भी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे मैंने कहा, वो भी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है जल जीवन मिशन और बाकी मिशन के माध्यम से। तो जरूरत है इस समय और सारे मिशन जो कुछ और मिनिस्ट्री में भी चल रहे हैं उनको एकीकृत करने की, क्योंकि अभी जैसे पंड्या साहब ने कहा कि हमें उतने ज्यादा हमारे काम नहीं कर पा रहे, मतलब एक तरह से रियूज रिसाइकल यूज के, क्योंकि हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में बाकी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि एनर्जी की उतनी कमी है। तो मैंने देखा था गुजरात में कुछ जगहों पे उन्होंने नहरों के किनारे कुछ तालाबों पे भी सोलर पैनल भी लगाए। तो कहीं ना कहीं हमें नेक्सस अप्रोच पे भी जाना चाहिए, एनर्जी वाटर फूड, यानी कि पानी है तो उससे फूड भी होगा और कहीं ना कहीं एनर्जी जो सोलर एनर्जी है या किसी और तरह की आने वाले टाइम में हाइड्रोजन एनर्जी है, किसी चीज का उपयोग भी हम जब एकीकृत वे में करेंगे, उसकी पॉलिसी भी आए, किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर पाए और पर्यावरण का संरक्षण भी, तो इसमें लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जल जीवन मिशन तो जितने भी और भी प्रोग्राम होते हैं हम उसमें भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तो उन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना लोगों का मतलब रोल है, लोगों का भी रोल है, कंपनीज का भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एफर्ट जो है सबका मिलकर होगा, एकीकृत प्रयास करो।
पांड्या जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारा पूरा जल जीवन मिशन है इसमें जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनकी काफी मजबूती पर ध्यान दिया गया है और कैसे वो बहुत ही एक सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं जल के संरक्षण और जल को सारे लोगों तक समान रूप से उपलब्ध कराने में।
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो कि अर्बन या इवन रूरल वाटर सप्लाई में ध्यान देने वाली चीज है, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि जिस पाइप्स वगैरह से हमारे यहाँ जो पानी आता है उनका प्रॉपर रख रखाव और उनसे लीकेजेस को कम करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, खास करके वो शहरी इलाकों में जहाँ पर कि इस तरीके का जो संरचनाएं हैं वो काफी बड़ी होती हैं और काफी विकसित होती हैं, तो वहां पर ये देखना कि लीकेजेस ना हो और पानी जो है उसकी जो क्वालिटी है वो जाते हुए वो बीच में कहीं खराब ना हो और कोई पानी इसमें गंदा पानी ना मिले और पानी वहां तक पहुंचे, तो उसके लिए जो शहरों में जल संरचना के जो इंचार्जेस हैं उनके साथ जो है इसके बारे में खास काम किया गया है। जैसे नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा है, वो जो राष्ट्रीय गंगा मिशन है उसमें भी जो शहरों में जो पानी की जो ट्रीटमेंट्स हैं और वापस जो पानी हम जो नदियों को देते हैं उसको कैसे क्वालिटी वाइज सुधारा जाए, जिसके चलते फिर पानी के यूज में वही पानी को हम यूज कर पाए, तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो लीकेजेस प्रिवेंशन है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीजों में हमने जो है इसमें काफी ध्यान दिया गया है और उसके लिए रेट्रोफिटिंग वगैरह भी करके कि जिससे कि जो सर्विस लेवल है वो मेंटेन किया जा सके, और इसके लिए बाकी के जो काम है वो भी हम इसमें कर रहे हैं।
जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि सरकार की तो योजनाएं हैं, सरकार ने तो फंड्स उपलब्ध करा दिए, लेकिन इसमें सामाजिक भागीदारी कितनी है, तो इस दिशा में भी योजना में कोई ऐसी चीजें शामिल की गई हैं कि लोगों की, समुदाय की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो इस योजना में?
इसमें खास करके जो है ना एक तरीके से उसकी जो मालिक की भावना है वो कम्युनिटीज को देने की खास व्यवस्था है कि लोकल जो कम्युनिटी है, लोकल जो समाज है, वह ये जो सिस्टम जो बनाई जाए उसको वो अपनी मान के और खुद से उसको चलाए और खुद से उसको मैनेज करें। ये वाला जो एरिया है उसके बारे में जल जीवन मिशन में खास एक व्यवस्था दी गई है, क्योंकि जो जल जीवन मिशन का जो काम होता है वो जो लोकल लोग हैं, जो समाज है वहां का, उनको ध्यान में रखते हुए और उनकी सलाह लेते हुए करा जाता है। और इसलिए फिर जब ये सिस्टम बन जाती है तो फिर ये समाज को ही ये देने की व्यवस्था जो है वो करी जाती है कि वो ही लोग ऐसे कम्युनिटी मिलके अपना एक भागीदारी के बेसिस पे हम इसको जो है वो अपने चला सके। उसके लिए जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, उसके लिए जो सहायताएं हैं, वो फिर जल जीवन मिशन के थ्रू दिया जा सकता है।
पांड्या जी, मैं आपसे भी इस बारे में जानना चाहूंगा, अगर आप इसमें कुछ और जानकारी दे पाए, जैसे कि जब ये पूरा डॉक्यूमेंट है, जो पूरा मसौदा है जल जीवन मिशन का, इसमें पीपीपी मॉडल की बात की गई है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों भागीदारी की बात है, तो ये इसमें किस तरह के प्रावधान है?
इसमें इस तरीके के प्रावधान है कि जो नेटवर्क है, अब उसमें काफी सारे जो है वो तकनीकी रिक्वायरमेंट्स भी आते हैं, खास करके जैसे प्लम्बिंग का काम आता है, इलेक्ट्रिकल का काम आता है, क्वालिटी को देखने का काम आता है, तो ये जो काम है उसके लिए फिर प्राइवेट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और पब्लिक पार्टनरशिप में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और मेंटेनेंस है उसमें फिर पब्लिक की इसमें जो है वो जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों को मिला के और फिर कम्युनिटी जो है वो अपना इसका एक रेवेन्यू मॉडल तैयार करे कि जिसकी वजह से ये जो सिस्टम का जो रख रखाव है वो रख रखाव का जो रिक्वायरमेंट्स है वो खुद ही उसको पैदा करे, चाहे वो कैश में पैदा करे चाहे वो काइंड में पैदा करे, और फिर उससे ये सिस्टम को खुद से आगे चलाए। दूसरा जो है ये होता है कि पानी के जो स्रोत है वो स्रोत जनरली सरकार या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स के हाथ में होते हैं, तो उनके साथ एक भागीदारी के बेसिस पे कि भाई इतना पानी जो है वो चाहिए होगा, तो उसके लिए जो व्यवस्था करनी है और उसके लिए जो प्रायोरिटीज वगैरह सेट करनी है, वो सब काम जो है वो एक कम्युनिटी बेस्ड, गांव के जो पंचायत है और गांव के जो पानी यूजर, वाटर यूजर एसोसिएशन वगैरह वाले हैं, उनके साथ मिलके ये करी जाती है।
अरविंद जी, जैसा कि हम जानते हैं जल जीवन मिशन ने 5 साल की बहुत छोटी सी अवधि में 3 करोड़ से लेकर 15 करोड़ ग्रामीण जल कनेक्शंस को हासिल करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि मिली है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जल की उपलब्धता की दृष्टि से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आगे जो हमारे सामने बड़े लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए हमारे पास क्या पीने योग्य जल उपलब्ध है?
जल की जो एक तरह से हमारे यहाँ समस्या आई पिछले 30 सालों से पीने के पानी की, पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल, का बहुत बड़ा कारण था कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जैसे वाटर साइकिल बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन इसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। अगर जल जीवन मिशन में सभी पहलुओं पे चिंतन ठीक से होगा, यानी टॉप डाउन और बॉटम अप, टॉप डाउन में उसका फ्रेमवर्क ठीक से बना, बाकी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की बाकी एजेंसीज हैं या सिविल सोसाइटी है या जो भी इस्तेमाल करने वाले उनके लिए क्या उनका रोल है, तो हम उनका फिर बॉटम अप बोलते हैं, यानी कम्युनिटी के बीच में, यानी कि शहर है, ग्रामीण क्षेत्र है, कहां पे उनकी भागीदारी, क्योंकि 10 साल पहले हम बात करते थे लोगों से कि ये आपका काम है, वो कहते थे कि नहीं ये तो गवर्नमेंट का काम है, तो आज हम कहते हैं कि भाई, वो भी कहते हैं हाँ ठीक है, हम मिलके एक सोसाइटी, हम उसको एज ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच जब बात करते हैं हम, तो उसका मतलब ये होता है कि सारी सोसाइटी सारे विकास के लिए जिम्मेदार है। अब जल नहीं है तो ना जीवन है ना कोई भी महत्वपूर्ण काम हो सकता है, तो जिस तरह से योजनाएं बनी है, मुझे मौका मिला आपके वेटलैंड रूल्स को बनाने का या और भी महत्वपूर्ण जगह पे एक तरह से कमिटीज में, काउंसिल्स में, तो जो हम जो वेटलैंड रूल बना रहे थे तो एक चीज निकल के आई थी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच जो थी, किसी तरह से जब किसी भी, अगर हम तालाब का किसी का समझते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, हाइड्रोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं और बाकी भी कई तरह के इश्यूज होते हैं जिनको एक इंटीग्रेटेड देखना पड़ता है। अब वो कहीं ना कहीं जब जल का आप एक तरह से खाली पानी के लिए, पीने के लिए तो काम नहीं आता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अब मछली का जो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, तालाब बने हैं, लोगों की आय बनी कई तरह से, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम उसको इंटीग्रेटेड वे में समझते हैं, और जिस तरह से कि जल जीवन मिशन पिछले 5 सालों से काम कर रहा है, तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं अगले 5 सालों में वो सारे टारगेट भी अचीव कर पाएगा, क्योंकि ठीक है वहां पे 12 करोड़ लोगों तक उन्होंने पाइपलाइन तो पहुंचा दी है, लेकिन पानी के इंतजाम के लिए हमें क्या करना है, पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को समझना पड़ेगा। अब 3 महीने तो हमारे पास पूरे टाइम, आप समझिए कि पूरे टाइम एक तरह से बाढ़ ही सब चीज रहती, कभी एकदम से सूखा पड़ता है, तो उसके लिए हमें पूरे प्रबंधन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी कहाँ से आ रहा है, उस पानी को हम किस तरह से उपयोग में लाएंगे ताकि पूरे साल जल की कमी ना हो, और जो उसके पानी से जुड़ी हुई जो आपदाएं हैं कहीं ना कहीं, जो उनसे भी लोगों को बचाना है। अब जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था कि इस जल जीवन मिशन की वजह से WHO की जो रिपोर्ट है, 30% बच्चों की हेल्थ में, बाकी चीजों में फर्क पड़ा है। अब बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो गंदे पानी के उपयोग से हो पाती हैं, तो हम जो स्वच्छ पानी अगर हर घर तक पहुंचा पा रहे हैं या आगे और भी पहुंचा पाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारी को दूर कर देंगे, रोजगार दे पाएंगे उनको, और स्वच्छ पानी उनके पास टाइम पे मिलेगा तो उनके बहुत सारे जो काम जिसकी वजह से वो पानी को लाने में ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिक्कत आती थी वो अपने काम कर पाएंगे। अब इसी विषय में जो और भी जो स्टेक होल्डर हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंडिंग एजेंसी है, क्योंकि प्रॉपर फंड चाहिए हर चीज के लिए, एक प्लानिंग चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, टेक्निकल नो हाउ चाहिए, तो इन सब चीजों की जरूरत है। और इसके चलते हुए मुझे लगता है अगले 5 सालों में बहुत सारे टारगेट जो हम नहीं अचीव कर पाए वो भी हम अचीव कर पाए।
पांड्या जी, जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो हमने 2.28 लाख गांव तक जल को पहुंचाया है और शहरों में 190 जिलों में हमने हर घर जल का दर्जा हासिल किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी हमारे सामने है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो जल है वो उपयोग लायक है, वो पीने लायक है। इसके लिए टेस्टिंग की जरूरत भी पड़ती है, तो जो टेस्टिंग है, जो उनकी जांच है, नमूनों का संग्रह है, इस सारी चीजों को लेके योजना में किस किस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं?
इसमें हर तरीके के प्रावधान बनाए गए हैं। इसमें जो है वो इसी हाईएस्ट लेवल जो है ऊपर के लेवल पे लेबोरेटरीज बनाई गई हैं, जो कि एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं, जहां पर की पानी की जांच की जा सके और उसका जो है वो असेसमेंट किया जा सके। इसके सिवा फिर जो है वो फील्ड टेस्टिंग किट्स भी डेवलप की गई हैं, जो कि गांव में घर पे सोर्स पे या लोकेशन पे जाके और वहां पर पानी का टेस्ट जो है वो किया जाए और वहां पर देखा जाए कि पानी की क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए ये जो फील्ड टेस्टिंग किट्स हैं वो भी काफी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, सब जगह दी गई हैं और उसमें खास करके महिलाओं को इसमें जो है वो शिक्षित किया गया है, जिससे कि महिलाएं जो है अपने घर में सीधे जो पानी का जो क्वालिटी है उसके बारे में अपने घर में और पड़ोस में वो देख सकें और उसको इंश्योर कर सके। करीब जो है 24-25 लाख महिलाएं हैं जो इसके बारे में ट्रेन की गई हैं और उसकी वजह से जो है जो हमारी जो क्वालिटी है उसका हम अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं।
तो निश्चित रूप से हम आपके बहुत आभारी हैं अरविंद जी और पांड्या जी की आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और पूरा देश ही जो हमारी उपलब्धि है नल से जल के क्षेत्र में और जल जीवन मिशन के क्षेत्र में, इस उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। और निश्चित रूप से अगर देश में हर व्यक्ति को जल उपलब्ध होगा तो उसके जीवन स्तर में सुधार होगा और हमारा देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष AB पंड्या और जल संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।